And welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
Namaskar, Market Mantra mein aapka hardik abhinandan. Agle 30 minute tak hum hazir hain pramukh aarthik, vyaparik aur share bazaar ki taza khabron ke sath. Shrotaon, in khabron par charcha karne ke liye aur sambandhit vishayon par hamare gyan bhandar ko aur samriddh karne ke liye hamare sath studio mein aamantrit hain varishth aarthik sampadak AK Bhattachary ji. Mahoday, karyakram mein aapka hardik abhinandan.
Namaskar, dhanyawad.
Charcha shuru karenge shrotaon, magar usse pehle aaiye jane headlines.
Thank you Prachi. Benchmark domestic indices rise, Sensex gains over 1200 points, Nifty settles above 23,300. Major Asian indices end in positive territory and global crude oil prices decline over 5%.
प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में उछाल, सेंसेक्स लगभग 1200 अंक बढ़ा, निफ्टी 23,300 के ऊपर बंद हुआ. एशिया के शेयर बाजार में तेजड़ियों ने बनाई बढ़त और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 5% की गिरावट.
The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
श्रोताओं, आइए जानें हमारे शेयर बाजार का हाल. देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों ने आज 1.5% से अधिक की बढ़त दर्ज की. सेंसेक्स 1205 अंक यानी 1.63% बढ़कर 75273 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 394 अंक यानी 1.72% बढ़कर 23306 पर स्थिर हुआ. इससे पहले एशियाई बाजारों में सकारात्मक संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावटों के कारण दोनों ही सूचकांक 0.5% से अधिक की उछाल के साथ खुले. सत्र के दौरान सूचकांकों ने अंतरदिवसीय कारोबार में बढ़त को बरकरार रखा, लेकिन अंतिम घंटे में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई.
Benchmark domestic equity indices surged over 1.5% today, driven by hopes of de-escalation in West Asia. The Sensex zoomed 1,205 points, or 1.63%, to close at 75,273, while the Nifty jumped 394 points, or 1.72%, to settle at 23,306. Earlier, the indices opened over 0.5% higher, driven by positive cues from Asian markets and a decline in crude oil prices. As the session progressed, the indices extended their gains during intraday trade, but paired some of them in the final hour of trading.
सेंसेक्स में शामिल 30 में से 26 कंपनियों के शेयरों ने मुनाफा कमाया. प्रमुख प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में अल्ट्राटेक सीमेंट 4.4%, बजाज फाइनेंस और लार्सन एंड टूब्रो दोनों ही में 3.8% और टाइटन के शेयर में 3.5% की बढ़त देखी गई. वहीं बात अगर घाटे में रही कंपनियों की करें तो इनके शेयर्स में सबसे पहला नाम टेक महिंद्रा लगभग 1.7%, पावर ग्रिड लगभग 1.4% और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में लगभग 1% की गिरावट आई.
Among the sectoral indices at the BSE, all sectors ended in the positive territory. Among the top gainers, mid small private bank surged 3.7%, consumer durables rose nearly 3.3% and commodities advanced over 2.7%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,959 companies advanced, shares of 1,357 companies declined and shares of 156 companies remained unchanged.
और श्रोताओं, कल भारतीय शेयर बाजार रामनवमी के उपलक्ष्य में बंद रहेंगे. आइए जानें अब रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 10 पैसे कमजोर हुआ और एक डॉलर की कीमत 93.97 रुपए दर्ज हुई. ये 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 99.2 2.7 पर था। महोदय, हाल की भारी गिरावट हमने देखी और अब तेजी भी हम देख रहे हैं, क्या ये डेड कैट बाउंस है?
नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये डेड कैट बाउंस है। ये मैं समझता हूं कि ये एक, अगर आप कह सकते हैं इसको, ये रिलीफ रैली है जो हमने सोमवार को जो हमने देखा था, जिस तरह से जो उनका जो ट्रंप साहब का जो ऐलान था, जो युद्ध की जो स्थिति जो थी उसमें काफी मार्केट में गिरावट, बड़ी गिरावट आई, तेलों के दाम बढ़ गए, तो सारी जो जो विश्व की जो आर्थिक स्थिति है वो और भी गंभीर नजर आ रही थी और मार्केट उसी को दोहरा रहा था, उसका रिस्पॉन्ड कर रहा था उसी को। और पिछले जो कल और आज जो हमने देखा है, वो जो एक जिसे आप कहेंगे डी एस्केलेशन जो हो रहा है
जी।
उसका ही एक परिचायक है। और मैं ये समझता हूँ कि अगले 2-3 दिन तक, जो 5 दिन का जो उन्होंने पॉज जो ऐलान किया था ट्रंप साहब ने, उसको हमें देखना है कि किस तरह से वो पॉज एक्चुअल सेसेशन ऑफ वॉर एक्टिविटीज में बदलता है और किस तरह से बदलता है। मार्केट इस वक्त सिर्फ ये देख रहा है कि जो लॉसेस जो अभी तक हुई है युद्ध के बाद, 28 फरवरी से युद्ध चालू हुआ, अभी मार्केट ने अभी भी आधे लॉस उसको अभी रिकवर नहीं किया। तो मैं ये समझता हूं कि जो मार्केट में की जो स्थिति जो है वो अभी भी अनसर्टेन है, अनिश्चयता में डूबी हुई है। हम इसकी एक क्लियर ट्रैजेक्टरी को हमें तभी मालूम होगा जब हम ये ठीक तरह से हम समझ सकेंगे कि युद्ध विरति का जो आशा की किरण जो उसकी आ रही है वो सचमुच वो आती हैं या वो भी एक मिराज सा समझ जाता है।
जी, आपकी राय में अभी के जो अभी की हालिया परिस्थिति है उसको बाजार की नजर से समझने के लिए क्या हमें कौन से मैक्रो इंडिकेटर्स को देखना चाहिए ताकि हम इसके बारे में ज्यादा बेहतर समझ पाए, ज्यादा बेहतर एंटिसिपेट कर
पाए? जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं इस वक्त जो हमारे पास है वो सारे लैगिंग है, मतलब वो सारे पिछले हमारे जो इंडिकेशन, जैसे मान लीजिए हमारे लिए जो तेल के दाम जो है, तेलों के दाम अगर हम ब्रेंट क्रूड को सिर्फ देखते हैं, मैं समझता हूं कि ब्रेंट क्रूड को देखने से हमें तेलों के दाम समझ नहीं आएगा भारतीय अर्थनीति के लिए। हमें देखना पड़ेगा इंडियन बास्केट क्रूड ऑयल प्राइस, वो एक सीरियन, कतार और ब्रेंट का एक समन्वय का एक अलग प्राइस है। उसके हिसाब से अगर 24 मार्च यानी कल जो उसका जो इंडियन ब्रेंट क्रूड का प्राइस था वो करीबन $143 पर बैरल था
जी।
तो इसका मतलब कल की तारीख में जो भारतीय कंपनियों ने जो तेल खरीदा उनको $143 पर बैरल देना पड़ा। पर अगर आप ब्रेंट को देखेंगे तो वो कहेंगे कि वो $100 है, $108 है, $107 है। तो मैं समझता हूं जो हम हमारी हर गतिविधि में जो हम ब्रेंट के नाम लेकर हम कहते हैं कि हमारी तेल की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी एक सुनहरा मौका या गलत साबित हो रहा है, हमें इंडियन बास्केट क्रूड प्राइस देखना है। और उसमें मैं समझता हूँ कि जो डायरेक्शन जो है वो अभी भी काफी ऊपर जा रही है। हालांकि इस साल अगर जो वित्तीय वर्ष में देखेंगे तो हमें बेनिफिट मिला है। अगर पूरे साल का अगर देखेंगे करीबन $71-72 के करीबन कॉस्ट आया है इस साल का, पर अगले साल का जो इंडिकेटर हमें वो इंडियन बास्केट ऑफ क्रूड प्राइस देखना पड़ेगा। एक पहला वो, और दूसरा ये है कि किस तरह से जो हमारे एमएसएमई सेक्टर और जो हमारी जो टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो किस तरह से ये डिमांड शॉक तो जरूर हुआ है, उसको अगले 6 महीने में किस तरह से उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। ये दोनों चीज, क्योंकि इसका जो प्रतिफलन होगा वो जीडीपी ग्रोथ के ऊपर होगा।
जी मैं बस यही आने वाली थी।
तो जीडीपी ग्रोथ अगर अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत धक्का पहुंचता है
जी।
तो इसका मतलब कि हमें आर्थिक जो एक चैलेंजेस जो होंगे वो चुनौतियां वो और भी गंभीर हो जाएंगी, और उसके बाद जो एक्सटर्नल अकाउंट जो है हमारी जो उसको भी देखना पड़ेगा किस तरह से हमारी जो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हालांकि इस साल काफी अच्छी रही है, 1% जीडीपी का 1% सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट रहा है, पर अगले साल अगर 1% से बढ़कर क्या 1.5% होगा या 2% होगा उसकी भी एक बहुत बड़ी एक हमें ट्रैक करना होगा। तो जीडीपी, करंट अकाउंट डेफिसिट और इंडियन ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस, ये तीन चीज को आपको देखना पड़ेगा अगले कुछ हफ्तों में कि वो हमारी भारतीय अर्थनीति को किस तरह से इसको संभालती है वो समझने के लिए।
जी जी।
एक ही भी यू जस्ट सेड दैट यू नो द रैली दैट वी हैव सीन इन द मार्केट इन द लास्ट टू डेज इज मोर ऑफ अ रिलीफ रैली रादर, सो आर वी सेइंग दैट दिस इज नॉट रियली अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट, नंबर वन। नंबर टू, इफ द मार्केट्स आर एक्चुअली जस्ट रिएक्टिंग टू व्हाटएवर इज हैपनिंग ऑन द जियोपॉलिटिकल सीन, what does it, you know, that means all the other macroeconomic indicators of the Indian economy, they are getting in the back, they are, you know, being pushed to the background. So
you are absolutely right, there is no structural change here right now, it is a relief rally, and right now the market participants probably are putting all the essential inherent resilience of the Indian economy in terms of coming back. If somebody, some agency says their Indian growth story is still intact, of course it is still intact. But the question is, right now, the market is completely ignoring it and looking at some of those key things like the external account, the oil price, and the GDP growth. So remember that yes. India is dependent on energy imports,
absolutely.
Oil imports to the tune of 90%. So therefore, we are exposed to this shock little more than many other countries.
So basically, what you're saying is that if I read it correct, the fact that the macroeconomic indicators are being pushed back is because, like you said, our dependence on so much of dependence on, you know, import of energy, and then that will obviously affect our, you know, our economic growth. So absolutely.
If the cost of fuel goes up, then the prices go up.
Yes.
So the earlier the Goldilocks situation is no longer available to us, where inflation is low, growth is high. Growth may still be relatively okay.
Yes.
But inflation goes up, and right. that creates a challenge.
Right. Let's move on to the next story.
जी, आइए अब रुख करें एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ। एशियाई शेयर सूचकांकों में आज तेजी देखी गई। जापान करने की लगभग 2.9%, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.6%, चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 1.3%, हांगकांग का हैंगसैंग 1.1% और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में लगभग 1% की बढ़ोतरी हुई। प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों में भी तेजी देखी गई। जर्मनी का डैक्स 1.8%, फ्रांस का कैक 1.7% और लंदन का फुटसी अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 1.4% बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया।
Let's move on to the US markets. Wall Street ended yesterday's session lower amid uncertainty surrounding potential de-escalation talks between the US and Iran. Among the major indices, the Nasdaq Composite Index slipped over 0.8%, the S&P 500 fell almost 0.4%, and the Dow Jones Industrial Average dipped nearly 0.2%. It's very interesting because, you know, normally Asian markets, when they open in the morning, they take cue from the overnight, you know, US markets. But we see that the US markets, despite this de-escalation or the pause of 5 days, did not really respond that positively. Why?
Well, I think what is really happening in the global stock markets is a reassessment of the manner in which the markets are responding to the war situation. From Monday onwards, whatever mm-hmm. happened, the markets would actually come back, be in the positive on the start of the week, and then gradually go back,
right,
and then again recover it after the weekend. But this is the first week where we have seen that the start of the week has seen a major nosedive,
right,
and which was reversed somewhat. So clearly the markets, the trend movement, particularly in the US markets, is showing some change in the way they have been following the trajectory of the markets. So I have a feeling is that the US markets are still not taking the message of de-escalation very seriously. So
yeah, I was about to say they're being cautious, I guess.
More cautious.
Yes.
And for India, the war is largely influenced or determined by to what extent we can access our oil.
Yes.
Now, for the US, it is not just a question of oil, but it is also a question of inflation. And then there are many other factors. Right. You know, US is getting into its midterm elections in a few months from now. So there are many other factors in the US markets right there.
Right. Let's move on to the next story. The Union Cabinet today approved the launch and implementation of the Regional Connectivity Scheme, Modified URAN, for a period of 10 years from 2026-27 to 2035-36, with a total outlay of 28,840 crore rupees. Briefing media after the cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said 100 airports will be developed from existing unserved airstrips to enhance regional connectivity. This will lead to enhanced regional air connectivity to underserved and unserved areas. It will also give a boost to economic growth, trade and tourism in Tier 2 and Tier 3 cities and support affordable air travel for common citizens.
उड़ान 2.0 इसमें 100 न्यू एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा 100 न्यू एयरपोर्ट्स को चैलेंज मोड में डेवलप किया जाएगा राज्य सरकारों को ये चैलेंज दिया जाएगा कि आप लोग प्रायोरिटी डिसाइड करो कहां पे एयरपोर्ट बनाना है और लैंड से रिलेटेड परमिशन से रिलेटेड कहीं पर भी कोई भी इश्यू आता है वो सब आप प्रायोरिटी बेसिस पे क्लियर करो उस एयरपोर्ट को लिया जाएगा इस प्रोजेक्ट
AKB, a quick comment from you on this particular decision. Like it says that the government says that it will lead to enhanced regional connectivity to underserved and unserved areas, and it will also give boost to economic growth and trade.
I think the infrastructure boost is something that is more important here.
Right.
The URAN scheme, when it was launched, I think sometime around 2015 or so.
Yes.
It did increase air connectivity among Tier 2 and Tier 3 towns. And more importantly, it connected the Tier 1 towns, cities like Bombay, Delhi and Hyderabad, Bangalore, with the Tier 2 and Tier 3 towns.
Yeah.
So it did create a very nice network of air connections. Now, the question is, how do you make sure that the infrastructure gets built to give that scheme a boost? More important point here is that if 100 airports can be built through this challenge mode, which means the states will have to come and make an offer, which will be attractive for investors to come in and invest. So it creates a lot of spin-off benefits when you build an airport. It creates jobs, it creates demand for materials, raw materials, cement, everything. So I think it will have an overall positive impact on the pace of economic activity.
आइए आगे बढ़ते हैं. S&P Global की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया तनावों के बावजूद वित्त वर्ष 2026-27 में भारत का आर्थिक विकास दर 7.1% पर रहने का अनुमान है. एजेंसी की ताजा आर्थिक रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत घरेलू मांग, सतत निर्यात और निजी निवेश में आ रहे धीरे धीरे सुधार से भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र की प्रगति भारत और अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ हो रही है. चीन को छोड़कर इस क्षेत्र में 2026 में विकास के 4.5% बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में अस्थिरता के बावजूद प्रबंधनीय सीमा के भीतर मुद्रास्फीति के लगभग 4.3% तक कम होने का अनुमान है. महोदय, मैं जानना चाहूंगी कि S&P के इस पूर्वानुमान से आप कितने सहमत हैं?
देखिए, जो ये पूर्वानुमान है
जी,
उनकी अपनी एक असेसमेंट है, और मैं समझता हूं कि इस वक्त की जो स्थिति जो है
जी,
उसके अनुसार अगर इन्फ्लेशन 4.3% के अंदर रह जाए तो मैं समझूंगा कि ये बहुत बड़ी एक एक एक
उपलब्धि
है,
चांदी चांदी।
और अगर ग्रोथ अगर 7.1% में आए तो मैं समझूंगा कि भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। पर इसके इनको हासिल करने के लिए मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि तेल का मार्केट के ऊपर काफी निर्भर करता है, इस तरह से दामों का जो इम्पैक्ट जो होता है ग्रोथ के ऊपर, इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर, तो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ग्लोबल का एस्टिमेट है
जी।
तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, पर आशा की बात जरूर है ये, पर मैं उतना सहमत नहीं हूँ इस असेसमेंट से।
ओके, एकेबी, यू मे नॉट नेसेसरीली यू एग्री विद द यू नो प्रेडिक्शन बाय S&P ग्लोबल, बट माय पॉइंट टू यू इज लाइक यू सेइंग दैट देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस हियर, बट इफ वी मूव, if we do see that, you know, Indian economy is still one of the fastest growing economies, and as and when this situation in West Asia resolves and we move forward and hopefully the oil prices will, you know, calm down, what is it that the government needs to do to ensure in the long term to, you know, kind of you make this kind of 7.1% come true?
Well, you know, I mean, the most important thing right now in the current context is how do you ensure that your dependence on oil is reduced as much as possible on imports. If a country is growing at 6-7% growth for so many years, and remember from 2014 yes. onwards, we have been having a very benign oil prices. And probably, I think we became a little complacent about paying enough attention to boost domestic production, and today our import dependence has gone up to almost 89-90% of crude oil imports. And what is more is there's even petroleum products like LPG. We import so much, almost double of what we consume is imported. So therefore we need to invest a lot more in creating domestic capacity, tell our oil companies to produce more LPG domestically. And of course, exploration policies will have to be made more attractive so that they can incentivize new investment to come and set up more exploration activities.
Right. Let's move on to the next story. The Union Minister of State in the Prime Minister's office, Dr. Jitendra Singh, said that India continues to depend heavily on imports for rare earth permanent magnets and assured that the government has begun taking decisive steps to build domestic manufacturing capacity. Replying during the question hour in the Lok Sabha, he said these materials are strategically important for multiple high technology sectors. The minister added that at present, India's requirement for rare earth permanent magnets is around 4,000 units. However, he cautioned that by the time the country reaches the capacity to produce 5,000 units domestically, the national requirement is expected to rise to 8,000 units by 2030. AKB, we have seen in the budget also, last year's budget and this year's budget also, that, you know, government is putting a lot of emphasis on this rare earth permanent magnets and, you know, the incentives, that kind of incentives that have come in. So what is it that we require? Because here we see that the minister has said that the government has begun taking decisive steps to build domestic manufacturing capacity. Can you elaborate on that?
Well, you know, what's really happening is this sector is very critical for our entire, you know, it is not just electronic components, but also defense.
Yes.
Automotive sector. So therefore, and we do have some resources available domestically. But what has not been happening is adequate investment has not taken place in this area to create more magnets. And as the minister very rightly pointed out, that even if we achieve that capacity by that year, our demand would have gone up. So I think it's good that we have taken this step to increase our capacity in this area, very critical area. Otherwise, we will be dependent on imports. And therefore, it's a strategic import like oil. Our strategic areas, we should reduce our independence as far as possible. So I think it's a good piece of news coming from the minister.
Is there any thos roadmap?
देखिए, इसका रोडमैप सरकार के पास है और मंत्री जी ने तो उसी का ऐलान किया है। और मैं ये समझता हूं कि इसमें जो हमारी जो मैग्नेट एंड रेयर अर्थ के बनाने में जो इलेक्ट्रिसिटी और क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है उसमें भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और पानी की उपलब्धि जो अवेलेबिलिटी है हमारे पास है उसको भी ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सो काफी कुछ में काम करना पड़ेगा, और आई एम श्योर उसी के काम ये जो ब्यौरा दिया गया है मिनिस्टर साहब से उसमें इसमें काम चलेगा।
जी आगे बढ़ते हैं। सरकार ने कहा है कि देश में 26 करोड़ टन कच्चे तेल के शोधन की क्षमता है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया कि पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।
Let's move on to the international crude oil prices. Global crude oil prices sank by over 5% today after the United States sent Iran a 15-point proposal aimed at ending the war, prompting hopes of progress towards a ceasefire, despite Israel and Iran continuing to exchange airstrikes. Brent crude was trading over 5.7% down at $98.49 per barrel, while West Texas Intermediate crude was trading 5.7% down at $87.07 per barrel when reports last came in. And let's also have a look at the international and Indian bullion market prices of gold and silver. In the Indian bullion market, 24 karat gold was trading 4.5% up at 1,45,720 rupees per 10 grams, while silver was trading 5.4% higher at 2,37,060 rupees per kilogram a short while ago.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ताजा समाचार मिलने तक अप्रैल अनुबंध वाला सोना 4.4% की बढ़त के साथ 1,44,980 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, और मई अनुबंध वाली चांदी 5.6% बढ़त के साथ 2,36,464 पर प्रति किलोग्राम पर थी।
एकेबी, आई विल जस्ट कम बैक टू दी क्रूड ऑयल प्राइसेस बिकॉज दैट इज यू नो मेजर टॉपिक राइट नाउ। सो we've seen that, you know, because of this situation in the West Asia, we've seen pump prices going up even in many countries across the world, including US. But touch wood, thankfully, so far in India, the government has very selectively passed on this increase, right? But what will happen, because this will at some point have a, you know, impact on the profit margins of the oil companies. So how do you see the situation evolving?
Well, you know, the way I have seen this, as I told you, that the Indian oil refiners go by what is the Indian basket crude oil. Now, as I told you, that $71 or $72 per barrel is the Indian basket crude oil price, which is actually a decline from 2024-25 price of $78 per barrel.
Right.
So, till this financial year, I think our Indian oil refiners are having a good margin.
Right.
The problem is, when the Indian basket crude oil price goes up to $143 per barrel, which will start reflecting in the average monthly price, you will see the refiners pinching, feeling the pinch. So therefore, it is then that the refiners will start putting pressure on the government to allow an increase in prices.
जाते जाते भट्टाचार्य जी, सोने के दामों पर आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा।
सोना, आज की जो सोना का दाम में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है, मैं समझता हूँ ये मार्केट का जो एक अपनी जो सेंसिबल जो सैनिटी है उसमें आने का संदेश है, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि इतनी नर्वसनेस थी कि सोने के भी दाम गिर रहे थे। आज लगा कि सोने का दाम ऊपर चढ़ने का मतलब कि मार्केट थोड़ी बहुत अपनी पुरानी सैनिटी में वापस आ रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सवालों के जवाब देने का और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए।
थैंक यू, नमस्कार।
Before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise. Sensex gains over 1,200 points. Nifty settles above 23,300. Major Asian indices end in positive territory and global crude oil prices decline over 5%. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।